ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सामाजिक संजाल नियमन संबंधी विधेयक संघीय संसद से वापस लेने का सरकार का निर्णय। निश्चिंत होकर आगामी फागुन 21 गति को होने वाले निर्वाचन की तैयारी में जुटने का प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने किया आग्रह। जापान के औपचारिक दौरे पर रहे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और जापान के सम्राट नारुहितो और प्रधानमंत्री सनाए के बीच हुई भेंटवार्ता। नेपाल के सामाजिक और आर्थिक विकास में जापान महत्वपूर्ण विकास साझेदार रहा है, राष्ट्रपति पौडेल का कथन। और अमेरिका और भारत के बीच भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25% टैरिफ को घटाकर 18% पर कायम रखने पर बनी सहमति। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने सोशल मीडिया नियमन से संबंधित विधेयक को संघीय संसद से वापस लेने का निर्णय किया है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सोशल मीडिया के संचालन, उपयोग और नियमन से संबंधित व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक 2081 को संसद से वापस लेने की स्वीकृति देने का निर्णय किया गया। ये जानकारी गृह मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता ओम प्रकाश अर्याल ने दी। इसी तरह मंत्रिपरिषद की बैठक ने निर्माणाधीन संघीय संसद भवन परिसर में जेएनजी आंदोलन के शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित करने का भी निर्णय किया है। गृहमंत्री अर्याल ने बताया कि जेएनजी आंदोलन के शहीदों की प्रतिमाएं बनाने के लिए सिंह दरबार परिसर के गुरु योजना में संशोधन को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि सरकार ने इससे पहले भाद्र 23 और 24 को हुए जेएनजी आंदोलन के दौरान मारे गए 45 लोगों को शहीद घोषित किया था। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित, अनुशासित और चरित्रवान युवा ही देश की रीढ़ है। डबलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व के कावाश्रुति नगर पालिका एक स्थित हाथीखोर में आज आयोजित राष्ट्रीय सेवा दल सीनियर डिवीजन प्रशिक्षण के दीक्षांत कवाद समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों से भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और आगजनी जैसी आपदाओं में स्वेच्छा से बचाव, राहत और सेवा कार्यों में सहभागी बनकर समाज का भरोसा बनने का आग्रह किया। इसी कार्यक्रम के बाद संचारकर्मियों से बातचीत में प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि यदि मौसम ने साथ नहीं दिया तो हिमालयी जिलों में दूसरे चरण में निर्वाचन हो सकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के लिए सरकार आवश्यक सहयोग करेगी और यदि किसी कारणवश चुनाव करना संभव न हुआ तो दूसरे चरण में निर्वाचन कराने पर विचार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्की ने स्पष्ट किया कि अब तक किसी भी कारण से निर्वाचन स्थगित करने का विषय सामने नहीं आया है, इसलिए सभी को निश्चिंत होकर आगामी फागुन 21 गति को होने वाले निर्वाचन की तैयारी में जुटने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में हो रहे इस निर्वाचन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन उनका समाधान कर निर्वाचन कराया जाएगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और जापान के सम्राट नारुहितो के बीच आज टोक्यो में शिष्टाचार भेंटवार्ता हुई। जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर गए राष्ट्रपति पौडेल और सम्राट नारुहितो के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात टोक्यो स्थित इम्पीरियल पैलेस में हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण और विश्वसनीय विकास साझेदार के रूप में जापान द्वारा किए गए सहयोग और निभाई गई भूमिका की उच्च प्रशंसा करते हुए कहा कि जापान के सहयोग से नेपाल और नेपाली जनता अत्यधिक लाभान्वित हुई है। राष्ट्रपति पौडेल ने सम्राट और साम्राज्ञी को अनुकूल समय पर नेपाल भ्रमण का निमंत्रण भी दिया। जापान के सम्राट नारुहितो ने नेपाल जापान कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ को हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की बात कहते हुए नेपाल को यथासंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। आज ही राष्ट्रपति पौडेल ने जापान के प्रधानमंत्री ताकायची सनाई से शिष्टाचार भेंट की। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को आज जापान सरकार की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। जापान की 4 दिवसीय यात्रा पूरी कर राष्ट्रपति पौडेल कल स्वदेश लौटने वाले हैं। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामचंद्र भंडारी ने आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए मतदाता शिक्षा, आचार संहिता आदि विषय पर सभी भाषाभाषियों द्वारा आसानी से समझी जा सकने वाली समाचार सामग्री तैयार कर उसके प्रचार प्रसार का आग्रह किया है। आज आयोग में आयोजित एक कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भंडारी ने कहा कि ये निर्वाचन नियमित नहीं है, बल्कि आकस्मिक है, इसलिए इसे समय पर और सफलतापूर्वक संपन्न करना विश्व के लिए एक उदाहरण बन सकता है। आयोग के सचिव कृष्ण बहादुर राउत ने बताया कि स्थानीय तह पर स्वयंसेवकों को परिचालित कर मतदाता शिक्षा प्रदान की जाएगी। सचिव राउत ने यह भी कहा कि आयोग के सामाजिक संजाल माध्यमों से आधिकारिक सामग्री का प्रचार प्रसार हो रहा है, इसलिए उस दिशा में भी समन्वय करने का भी सभी से आग्रह किया। इस अवसर पर आगामी फागुन 21 गते को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन से संबंधित समाचार उत्पादन एवं प्रचार प्रसार के विषय में सरकारी संचार माध्यमों और नियामक निकायों के बीच एक समझौता भी हुआ है। आयोग के अनुसार निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण से संबंधित ये समझौता निर्वाचन आयोग और सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल व नेपाल टेलीविजन, राष्ट्रीय समाचार समिति राससा, गोरखापुत्र संस्थान, प्रेस काउंसिल नेपाल तथा विज्ञापन बोर्ड के बीच संपन्न हुआ है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 हेस डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए सातों प्रदेशों में प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। आगामी फागुन 21 को होने जा रहे प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने आज सातों प्रदेशों में प्रतिनिधि भेजे हैं। पार्टी के उपसभापति विश्व प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में गठित केंद्रीय निर्वाचन संचालन समिति ने पार्टी की स्थिति का आकलन करने और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से सातों प्रदेशों में प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। ये जानकारी पार्टी के प्रवक्ता देवराज चालीसे ने दी। उन्होंने बताया कि नियुक्त किए गए केंद्रीय प्रतिनिधि संबंधित प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिलों में पार्टी की स्थिति का अध्ययन करेंगे और आवश्यक विषय पर केंद्रीय स्तर पर समन्वय करेंगे। लमजुंग में विभिन्न व्यक्तियों के पास मौजूद अनुमति प्राप्त 69 हथियार प्रशासन को सौंपा है। फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव को लक्षित कर लमजुंग प्रशासन ने अनुमति प्राप्त हथियार सौंपने का निर्देश किया था। पड़ोसी देश भारत में निपाह वायरस का संक्रमण दिखने के बाद नेपाल में इसे फैलने से रोकने के लिए भारत से जुड़ी पश्चिमी सीमा नाकों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। भारत से जुड़े सुदूर पश्चिम के 5 नाकों पर नेपाल आने वाले यात्रियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ये जानकारी सुदूर पश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका और भारत के बीच भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। दोनों देशों ने भारतीय उत्पादों पर लागू 25% आयात शुल्क को घटाकर 18% पर बनाए रखने पर सहमति जताई है। इस समझौते को द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। टैरिफ में कटौती से भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपने उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी। वहीं अमेरिकी उपभोक्ताओं और उद्योगों को भी अपेक्षाकृत सस्ते भारतीय सामान उपलब्ध होंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सामाजिक संजाल नियमन संबंधी विधेयक संघीय संसद से वापस लेने का सरकार का निर्णय निश्चिंत होकर आगामी फागुन 21 गते को होने वाले निर्वाचन की तैयारी में जुटने का प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने किया सभी से आग्रह। जापान के औपचारिक दौरे पर रहे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और जापान के सम्राट नारुहितो और प्रधानमंत्री सनाई के बीच हुई भेंटवार्ता। नेपाल के सामाजिक और आर्थिक विकास में जापान महत्वपूर्ण विकास साझेदार रहा है, राष्ट्रपति पौडेल का कथन। और अमेरिका और भारत के बीच भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25% टैरिफ को घटाकर 18% पर कायम रखने पर बनी सहमति। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।